जिस सुख की चर्चा करी है, इस सुख की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती? क्या हम आंसुओं रूपी फूलों से परमेश्वर का पूजन करते हैं? यदि नहीं, तो फिर जिस अनुभूति की, जिस सुख की चर्चा हुई है, उसका अनुभव कैसे हो पाएगा? बातें तो वही हैं जो कही जा चुकी हैं, पर कुछ एक दृष्टांतों के माध्यम से आपकी सेवा में संभवतया ये अधिक स्पष्ट हो सकेंगे। चर्चा चल रही थी, भगवान शिव हलाहल विष पी गए। जब उनसे पूछा गया किसके बल पर आपने ये विष पिया, समुद्र मंथन से कोई एक आधा ग्राम विष तो नहीं निकला होगा, इतना भारी मात्रा में विष आपने किस बल पर पी लिया? और उन्होंने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया, बड़े विश्वास के साथ, मैंने अपने मुख में राम शब्द रख रखा है, उसी के बल पर मैं ये विष पी गया। विष को मैंने राम से मिला दिया तो विश्राम हो गया। ये प्रश्न तो हमारे सामने भी उठना चाहिए, क्या हमारे मुख में राम नहीं है? हम विष क्यों नहीं पी सकते? हम दुख क्यों नहीं सह सकते? हमें सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? हम शोक क्यों नहीं सह सकते? क्या बात थी ऐसी? भगवान शिव भी उसी नाम की उपासना करते हैं जिसकी हम करते हैं, लेकिन वो तो उस विश्वास पर विष पी गए अकेले, किसी को हिस्सेदार नहीं बनाया। हमारे ऊपर इतना सा संकट आता है तो हम चाहते हैं इस संकट को दूसरे बांधे, भगवान शिव ने इसको बांधा नहीं। संकेत दिया, दुख सहना हो तो अकेले सहो, सुख सहना हो तो बांट के सहो। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, बांटो उसको, जितना बांटोगे उतना अधिक मिलेगा, ये पक के देखिएगा। तो क्या बात थी ऐसी? एक शब्द में यदि कहा जाए तो भगवान शिव को विश्वास का प्रतीक कहा जाता है, मां पार्वती को श्रद्धा कहा जाता है। इन्हीं दोनों के पुत्र विश्वास और श्रद्धा से उत्पन्न हुए हुए गणेश जी महाराज, दोनों के प्रतीक, बुद्धि एवं विवेक के प्रतीक, बुद्धि के सागर इन्हें कहा जाता है। एक कथा इस प्रकार की आती है, देवताओं में होड़ लग गई, प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? ऐसी ही और जैसे हमारे अंदर है, हम भी तो इसी दौड़ में लगे हुए हैं। प्रथम पूजन का अधिकारी, अधिक से अधिक मान प्राप्ति के अधिकारी, यही तो दौड़ हमारी भी है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, यदि देखा जाए तो यही दौड़ है, लक्ष्य ही है। किसी भी क्षेत्र में घूम के देख लीजिएगा, व्यापार है, कर्म है, संगीत है, किसी क्षेत्र में देख लीजिएगा, एक ही होड़ दिखाई देती है, मान सम्मान प्राप्ति की होड़। प्रथम पूजन का अधिकारी कौन है? भगवान शिव ने एक मापदंड निर्मित कर दिया, जो देवता सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के, परिक्रमा लगा के सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा, उसके लिए घोषित कर दिया जाएगा ये प्रथम पूजन का अधिकारी। बड़ी मामूली सी बात है, देवताओं के लिए विभिन्न उनके पास वाहन है, बड़े तेज तेज चलने वाले, ठीक है महाराज, हर कोई अविलंब, देरी नहीं करी, कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, सोचने का समय ही नहीं, क्यों पहले आना है। सब के सब देवता अपने अपने वाहन पर चल पड़े हैं। गणेश जी महाराज का वाहन आप जानते हो, चूहा है बेचारा, रींगने वाला, उस पर बैठ के आप शरीर भी गणेश जी का जानते हो, बहुत पेट निकला है, भारी है, हर वक्त लड्डू उनके पास होते हैं, मोटे हैं, पर वाहन बड़ा छोटा है, बैठ के पिता की आज्ञा है इसलिए आज्ञा का पालन करना है, चलो चलते। तो बेचारे बहुत पीछे, देवी देवताओं की पति पत्नियां इत्यादि जो भी कोई उनका परिवार है वह सब उन पर हंसते हैं। हम तो इसे बुद्धि का सागर मानते थे, लेकिन ये कितनी मूर्खता की बात कर रहा है। कहा ये लोग और कहा ये मूसा, ये वक्त कहां ले जाएगा। देव ऋषि नारद आगे से आ गए हैं ये सारा तमाशा देखने के लिए, कौतुक देखने के लिए। देव ऋषि नारद को सभी देवी देवता आते देखते हैं, लेकिन कोई रुकता नहीं, प्रणाम तक नहीं करते। कौन इससे मुंह लगाएगा, ये बड़ा बातें करने वाला है, इस वक्त समय है नहीं व्यक्त होने के लिए। एक बात करेंगे प्रणाम करेंगे तो ये आगे से अनेक बातें करेगा, इसलिए नजर छुपा के चलते जाते हैं, कोई नहीं रुकता। क्यों? पहले पहुंचना है, प्रथम पूजन का अधिकारी बनना है। वही दौड़ जिसकी दौड़ में सारा संसार दौड़ रहा है, वही दौड़ देवी देवताओं के अंदर नहीं रुके। गणपति जी महाराज बहुत पीछे हैं, दूर से देखा देवऋषि नारद आ रहे हैं तो अपने वाहन से उतर गए, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। देवऋषि नारद जी कहते हैं गणपति तुम तो जानते हो तेरा वाहन किस प्रकार का है, सारे देवता आज इस दौड़ में लगे हुए हैं, आप भी इस दौड़ में लग गए आपको शोभा नहीं देता। हंस पड़े देवऋषि, मैं तो उस लक्ष्य से नहीं दौड़ रहा। ध्यान दो सज्जनों, गणपति जी महाराज कहते हैं जिस लक्ष्य को लेके मैं दौड़ रहे हैं मैं उस लक्ष्य से नहीं दौड़ रहा, फल की आशा से मैं नहीं दौड़ रहा। जो फल की आशा लेके नहीं चलता उसको कर्मयोगी कहते हैं, वह संतों महात्माओं का एवं परमात्मा का अति प्रिय हुआ करता है। देवऋषि मैं फल की आशा लेके नहीं सफर कर रहा, फिर क्या बात है। महाराज देखो ना, मुझे पता है, मैं खगोल जानता हूं सारे ब्रह्मांड का, एक एक चीज मैंने नापी हुई है, मुझे पता है मैं चूहे पर सवारी करके मैं कभी भी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाऊंगा, बहुत समय लगेगा मुझे, पर मैं इस लक्ष्य को लेकर निकला ही नहीं, मैं तो इसके निकला हूं। प्रभु की आज्ञा है, पिताश्री की आज्ञा है, आज्ञा मुझे पालन करनी चाहिए। इसी बहाने अनेक रास्ते में तीर्थ आएंगे, उनकी यात्रा हो जाएगी, और आप जैसे संत महात्मा कोई रास्ते में मिल जाएंगे तो उनसे दर्शन हो जाएंगे, उनसे भेंट हो जाएगी। देखो ना, कृपा हुई मेरे ऊपर, आज आपके अकस्मात दर्शन हुए। देवऋषि नारद गुरु महाराज है, अति प्रसन्न हो गए। वह गणपति, मैं जैसा समझता था तूने वैसा ही उत्तर दिया और वैसा ही किया, शाबाशी दी और कहा बेटा अभी राम शब्द यहां लिख, एक परिक्रमा लेके भगवान शिव की जाके गोदी में जाके बैठ जा, ऐसे करके मैं आया हूं, मेरी परिक्रमा पूर्ण हो गई। पूछेंगे कैसे तो बोलना, सोचो ना भक्तजनों, इस नश्वर संसार के मूल में कौन है, वही अनश्वरना सत्य मूलक है रचना सारी, स्वामी जी महाराज ने लिखा है। इस रचना के पीछे मूल में कौन है, इस सारे संसार के मूल में कौन है, वही राम जिसका आप चक्कर परिक्रमा लगाते जा रहे हो। जाओ आप ही प्रथम पूजनीय हो, आप ही प्रथम पूजा के अधिकारी हो। गुरु ने एक युक्ति बता दी, आज्ञा कर दें, प्रश्न उठा कैसे, क्या भगवान के चरणों से या भगवान की चरण धूलि से। देखो विश्लेषण करने वाले किस प्रकार का विश्लेषण करते हैं, हम जैसों को चरणों में और चरण धूलि में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं वह प्रश्न करते हैं
अहल्या तरी किससे? भगवान के चरणों से या चरणों की धूलि? धूलि तो जनकपुरी आते आते भगवान को मिली, पहले नहीं। और यदि चरणों से तरी तो क्या अयोध्या में इससे पहले पत्थर नहीं थे? लेकिन कोई कहता तो नहीं है कि अयोध्या का कोई पत्थर तर गया। बड़ा प्रश्न रहा किन चरणों से तरी अहल्या या चरण धूलि से तरी? भगवान से यह प्रश्न पूछा गया, महाराज आप ही निर्णय कीजिएगा। भगवान श्री राम बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं भक्तजनों मात्र राम शब्द की रटन करते रहोगे तो वह मेरे चरणों के तुल्य है, उससे कुछ विशेष बात बनने नहीं वाली। जैसे राम शब्द में दो अक्षर बैठे ही मेरे दो चरण, इनकी मात्र रटन करते रहोगे तो मेरे चरणों से कोई तरने वाला है नहीं, इस प्रकार की रत्न से कोई तरने वाला है नहीं। इसके साथ धूलि मिल जाएगी, गुरु कृपा हो जाएगी, संत कृपा हो जाएगी, धूलि मिल जाएगी तो मेरे चरणों में अनुराग होने लग जाएगा। यहां फिर एक बात स्पष्ट करता हूं, पार करने के लिए तारने के लिए ना मेरे चरणों में समर्थ है ना चरण धूलि में समर्थ है, एक चीज और चाहिए और अति आवश्यक चीज है। वह यदि गुरुदेव विश्वामित्र मुझे आदेश न देते राम अपनी चरण धूलि से अहल्या को उतार दो तो मैं वह काम कभी ना कर पाता। नाम, नाम के साथ अनुराग, नामी के प्रति अनुराग और फिर उसके ऊपर गुरु कृपा जब तक नहीं होती। बड़े ढेर की बातें हैं भक्तजनों, ये बहुत बातें खोली भी नहीं जा सकती, पर यदि गुप्त रखता हूं तो अपने आप को दोषी मानूंगा। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए, आप जैसी मर्जी इसे समझिएगा, पर यदि गुप्त रखता हूं तो मैं अपने आप को दोषी ही मानूंगा। गुरु कृपा ही ऐसी है भक्तजनों, आपको जाप करते करते गुरु देखते जब थक जाता है, ये थक गया है आप और मैं भी इसे देख के थक गया हूं, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता है परमात्मा इस भक्त की मैं साक्षी देता हूं, इसने बहुत जप किया है, अब इसके ऊपर कृपा कर दो तो कृपा होती। कबीर जी महाराज से किसी ने पूछा, राम नाम का इतना प्रताप गाया है, आपने भी गाया है, अन्य संतों महात्माओं ने भी गाया है, क्या बात है महाराज? जो आपको प्राप्त हुआ हमें आज तक अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त क्या, अभी तक उसका अनुभव ही नहीं हुआ। प्राप्त की बात तो फिर कभी देखी जाएगी। कबीर जी महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक किसान है, उसके पास बड़ी सुंदर उपजाऊ भूमि है, अति अच्छा बीज, किसी फॉर्म से अच्छा बीज लेके उसमें बो दिया, खाद बहुत अच्छी है, सिंचाई भी बहुत अच्छी की है, वर्षा भी हो गई, इत्यादि इत्यादि जो कुछ भी हुआ हो गया, फसल भी लहलहाती है, खेत सारा फसल से लहला रहा है। कबीर सब कहते हैं, अब यदि कोई मूर्ख व्यक्ति अपने ही खेत में कुछ पशु छोड़ देता है तो साधक जनों ऐसे किसान को कभी कुछ मिल नहीं पाएगा। फसल तैयार है, स्वयं ही तैयार करी, लेकिन पशु छोड़ के चला दिया उनको तो फसल किसान के हाथ नहीं आएगी। कबीर सब कहते हैं यही हालत बिल्कुल हमारी है, नाम की कमाई बहुत करते हैं, बहुत जपते हैं, लेकिन कामना रूपी पशु बीच में छोड़ के सारी की सारी फसल हम बर्बाद कर देते हैं, उनको चरा देते हैं। इसलिए भक्तजनों बड़ी सुंदर बात श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जब विश्वामित्र की यज्ञ पूर्ति के लिए आए हैं, जानते हो सबसे पहले किसको मारा? याद है ना आपको, सबसे पहले महर्षि विश्वामित्र ने कहा ये ताड़का मिलने वाली है, सबसे पहले इसको मारो। क्यों? संत महात्मा कहते हैं ये ताड़का दुराशा है, आशा नहीं दुराशा। क्या अर्थ है इसका? संत महात्मा समझाते हैं दुराशा उसे कहा जाता है, नाम तो परमात्मा का जपो लेकिन आशा संसार से रखो, इसको संत महात्मा दुराशा कहते हैं। तो हमारा प्रथम शत्रु कौन? ताड़का। यही तो हम कर रहे हैं, नाम तो परमात्मा का जपते हैं लेकिन आशा औरों से रखते हैं, ये दुराशा है। सोचें भगवान कितना अपमानित अपने आप को मानते होंगे। क्या विश्वास है इस व्यक्ति में यदि मेरा नाम जपते हुए भी दूसरों के ऊपर दृष्टि रख रहा है, आंखें दूसरों के ऊपर है, इतना विश्वास नहीं कि मैं इसे क्या का क्या दे सकता हूं? आशा एक राम से दूसरी आशा छोड़े। विश्वामित्र के आदेश से ताड़का को पहले मरवा दिया, दुराशा को मार दिया। ये भूख ये तड़प तो हम सबके अंदर जगनी चाहिए। भजन में जिस सुख की आज चर्चा करी गई है, उस सुख की अनुभूति जब तक हमें नहीं होती तब तक हमें चैन नहीं आता। भक्तजन हमारी बेचैनी का कारण ही एक है कि उस सुख की अनुभूति आज तक नहीं हुई, इसलिए बेचैन बने हुए। परमेश्वर तेरी कृपा हो, तेरी कृपा से उस सुख की अनुभूति कभी भी तू करवा दे, कभी भी हो जाए तो जन्म जन्मांतरों की बेचैनी हमारी दूर हो जाएगी। कृपा कर हमारे ऊपर, कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। मैं अपना मन हरि संग जोड़ा, हरि सो जोड़ सभी से तोड़ा। साधचनों पहला भाग तो संभव हो सकता है, प्रयत्न के बाद, लाख प्रयत्न के बाद परमेश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से पहला भाग तो संभव हो जाता है, लेकिन दूसरा भाग असंभव ही बना रहता है, सबसे टूटती नहीं है। परमेश्वर से जुड़ सकती है लेकिन सबसे टूटती नहीं है, ये बहुत कठिन बात है। मोह छूटता नहीं, कहना बहुत आसान है, करके दिखाना बहुत कठिन। अविनाशी सुख की चर्चा कुछ सप्ताह से चल रही है। अविनाशी सुख ऐसा सुख जिसे प्राप्त करके फिर और कुछ प्राप्त करने की चाह नहीं रहती। पिछले कुछ सप्ताह से इसी सुख की चर्चा चल रही है। आज इस चर्चा को विश्राम देने का प्रयत्न करते हैं। अविनाशी सुख अर्थात सर्वोत्कृष्ट सुख, सदा रहने वाला सुख, सबसे बड़ा सुख, सबसे ऊंचा सुख, आत्यंतिक सुख जिसे कहा जाता है, परमानंद जिसे कहा जाता है, शाश्वत शांति जिसे कहा जाता है, परमात्मा का मिलन जिसे कहा जाता है, भगवत प्राप्ति जिसे कही जाती है, राम मिलन जिसे कहा जाता है, आत्मा का साक्षात्कार जिसे कहा जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार जिसे कहा जाता है, उसी को अविनाशी सुख कहा जाता है, परमधाम भी इसे ही कहा जाता है। मानो मानव जन्म की उच्चतम उपलब्धि, एक ही उपलब्धि जिसके लिए ये मानव जन्म मिला है वो है
अविनाशी सुख की प्राप्ति।
जब तक ये प्राप्त नहीं होता तब तक जीवन कृत कृत नहीं होता, अधूरापन बना रहता है।
जैसे ही इसकी प्राप्ति हो जाती है बस सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं जगती। तुम्हें पाके सब कुछ पा लिया, उसी सुख की खोज हर व्यक्ति कर रहा है।
सुख तो वह भीतर है लेकिन खोज हमारी बाहर है, प्रयत्न ही गलत है तो इसलिए सुख मिलेगा कहां से?
बाहर जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां तो वह सुख है ही नहीं।
आप कहोगे नहीं ये झूठ बोलता है, सुख तो है,
खाते हैं सुख मिलता है, भोग भोगते हैं सुख मिलता है, पुत्र जन्मता है सुख मिलता है, इत्यादि इत्यादि। सुख तो मिलता है लेकिन वह सुख क्षणिक सुख है।
वह सुख नहीं जिस सुख की खोज के लिए ये मानव जन्म मिला हुआ है, वह तो क्षणिक सुख है, आया और चला गया। नाश्ता किया, बहुत अच्छा नाश्ता लगा, पेट भर के नाश्ता किया, जितना मर्जी पेट भर लीजिएगा।
दोपहर को खाना यदि नहीं खाएंगे तो रात को तो अवश्य खाएंगे,
इतनी ही अवधि है उस सुख की, क्षणिक सुख। लेकिन खोज जो है, लक्ष्य जो है, वह तो है अविनाशी सुख। और जब तक प्राप्त नहीं होता, अनेक जन्म भी बीत जाते हैं तो भी उदासी दूर नहीं होती, तो भी अशांति दूर नहीं होती। यही तो कहते हो ना, बहुत देर हो गई है भजन पाठ करते हुए, जीवन समाप्त होने को आ रहा है, लेकिन उदासी या अशांति अभी तक बनी हुई है। वह तब तक बनी रहेगी जब तक वह अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं होती।
भीतर है वह सुख, वह सुख बाहर नहीं है, बाहर वाले संसार में, व्यवहारिक संसार में वह सुख नहीं है।
एक बात जान लीजिएगा, वह सुख जो भीतर का संसार है, भीतर का जगत है, वह वहां है।
भीतर मुड़ना कठिन है।
परमेश्वर ने हमारे साथ बड़ा भारी खेल खेला हुआ है, हमारी सारी की सारी इंद्रियां बहिर्मुखी बनाई हैं, लेकिन संत कहते हैं भीतर मुड़िएगा तब बात बनेगी। आंख बाहर की ओर देखती है, कान बाहर की ओर है, नासिका बाहर की ओर है, सबकी सब इंद्रियां देख लीजिएगा वह बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी कोई नहीं है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं जब तक अंतर्मुखी नहीं होगी तब तक अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? वह तो सुख भीतर है, बाहर नहीं।
सर्वोत्कृष्ट सुख, बहुत बड़ी चीज संसार में जब पानी हुआ करती है तो छोटी छोटी चीजों का त्याग करना पड़ता है, तब वह बड़ी चीज मिलती है। मुट्ठी में यदि चाहते हो हीरे मोती भरने हैं तो जो पहले पत्थर भर रखे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी उस मुट्ठी में हीरे मोती भरे जा सके।
हीरे द्वारा भरने हैं, पत्थरों की बात छोड़िएगा, चांदी सोना भी यदि मुट्ठी में भर रखा हुआ है तो उसे भी त्यागना होगा, तभी जाके वह उच्चतम चीज की प्राप्ति होगी।
एक गांव में बड़ा पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, अपर्णा देवी का मंदिर। किसी एक व्यक्ति की दुकान पर बड़ा भारी रश, सारा साल यहां यात्री आते रहते हैं, लेकिन एक ही दुकान जिस पर भारी रश। कुछ एक यात्री उसके पास गए, कहा लाला जी क्या बात है, आप ही की दुकान पर रश है, बाकी सब दुकानदार बिल्कुल बेकार बैठते। कहने लगा इसके पीछे एक रहस्य है, मेरी भी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी,
मेरी दुकान पर भी कोई नहीं आया करता, खाने के लिए घर में रोटी नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे जैसे और दुकानदार बैठते हैं। एक दिन एक महात्मा आया, मैंने अपनी व्यथा वर्णन करी। महात्मा ने कहा, कुछ पाना ही पाना चाहते हो या कुछ देना भी चाहते हो? मैं उनकी बात समझ नहीं सका, उन्हें कहा थोड़ा स्पष्ट करके समझाइएगा। महात्मा ने कहा, तुम्हारे घर में कुआं है, पीछे घर है आगे दुकान है, एक कोने में एक प्याऊ आरंभ कर, लोगों को पानी पिलाना शुरू कर। मैंने उनके कहे अनुसार दुकान के एक ही कोने में एक प्याऊ खोल लिया, कभी मैं बैठता, कभी मेरी पत्नी, कभी मेरा पुत्र, पानी पिलाता। घर के ही आंगन में एक पेड़ था, वहां दो चार चारपाइयां बिछा दी, यात्री लोग आने लग गए, पानी पीते, थोड़ी देर विश्राम करते, विश्राम करते फिर पानी पीते। इस प्रकार मेरे घर में और प्याऊ में यात्रियों का तांता लगने लग गया, सारे के सारे ग्राहक मेरी ओर मुड़ने लग गए। अब दो नौकर भी हैं मेरे पास, तब भी मेरा काम निपटता नहीं। कुछ पाना चाहते हो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलता। स्वामी राम सुखदास जी महाराज की कथनी बड़ी सुंदर याद आती है, भक्तिनो जीवन में कुछ भी बन जाओ, बहुत बड़े वक्ता बन जाओ, संगीतकार बन जाओ, विद्वान बन जाओ, कथावाचक बन जाओ, अनेक किताबें लिख डालो, करोड़पति बन जाओ, गुरु की पदवी प्राप्त कर लो, लोगों से जय जयकार करवाओ, यशमान की प्राप्ति होने लग जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक संसारिक सुख की चाह बनी रहेगी तब तक अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं। अविनाशी सुख की चाह मत सोचिएगा, ये चाह ही ना रही तो सुख मिलेगा नहीं। भक्तजनों, चाह छोड़ोगे तो सुख जितना अपेक्षित है उससे कहीं अधिक मिलेगा, चाह छोड़ के देखिएगा। एक जिम्मेदार बीज बोता है, बीज ही तो प्राप्त करता है, उसके बाद फल भी तो बीज ही है, जो बोता है वही काटता है, वही उसके हिस्से में आता है, मानो प्रचुर मात्रा में आता है, इससे अधिक तो कुछ नहीं होता। लेकिन जो बीज नहीं बोता, यदि वह धरती को खोदता है तो उसे राजा जनक की बात देखिएगा, उसे मातेश्वरी सीता मिली थी। किसान चह रख के बीज बोता है, राजा जनक ने चह रख के कुछ नहीं किया, उसे मातेश्वरी भक्ति की प्राप्ति। इस अविनाशी सुख को कैसे प्राप्त करें? बहुत साधन तो भक्तजनों ज्ञानी लोग बताते होंगे, मैं कुछ बुद्धि आपको कुछ बता नहीं सकूंगा, सुनी सुनाई पढ़ी लिखी छोटी छोटी बातें हैं, वही आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकूंगा, या जो अपने गुरुजनों के जीवन से देखा है वही आपके सामने प्रस्तुत है। भक्तजनों, एक ही साधन, मुख्य साधन हमारे लिए इस परमानंद की प्राप्ति के लिए, वह साधन क्या है? एक शिव के भक्त बड़ी देर भगवान की आराधना करें, भगवान प्रसन्न हो गए, आशुतोष भगवान आ गए, प्रकट हो गए। ये भक्त टुक टुक उनकी ओर देख रहा है, कुछ मांग नहीं रहा। भगवान कहते हैं, अरे मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू कुछ मांग मेरे से, देख क्या रहा है ऐसे, कुछ मांगता क्यों नहीं, वरदान मांग। भक्त हाथ से उड़ता है, महाराज आपके शरीर पर ना कपड़ा ना कोई आभूषण, मांगू तो क्या मांगू, राख सर्प बिच्छू आपको देख के तो महाराज कुछ देने को मन करता है, ना कि कुछ मांगने। क्या मांगू आपसे? भगवान कहते हैं, वक्त यदि मुझे देख के भी कपड़े और आभूषण मांगने को ही मन करता है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी। मैं तेरे सामने कपड़े पहन के नहीं आया, आभूषण पहन के नहीं आया। मेरे दर्शन का यदि फल यही है तो साधुजनों अपने भक्त को कहता है इससे बढ़ के दुर्भाग्य की बात और क्या हो। अरे मुझसे मांगना है तो कुछ विलक्षण चीज मांग। देख सर्प है मेरे गले में और सर्प काल का प्रतीक है, सर्प दुख का प्रतीक है। सोचना तू भक्त है, इतनी देर तूने भक्ति करी है, तेरे मन में ये बात आनी चाहिए। कौन सा अमृत है इस महात्मा के पास, कौन सा अमृत है इस भगवान के पास जिसके कारण इसने काल को अपने सीने से लगा रखा हुआ। अरे भाई अमृत मेरे से क्यों नहीं मानता। वह भक्ति रूपी अमृत मेरे से क्यों नहीं मानता। मुझे देख के तेरे मन में भक्ति रूपी अमृत पान की चाह, ये मांगने की चाह। अरे मेरे सामने आए हुए से भी यदि कपड़ा आभूषण धन दौलत मकान सारे ही मांगनी है तो ये तो बाजार में भी मिल जाती है, ये तो संसार में भी मिल जाती है। मेरे से तो वह चीज मांग जो मेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता। भक्ति मांग मेरे से मुझको ही मांग मेरे भक्त, ये मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। जौहरी के पास जाके कोयला कोई मांगे, होता है उसके पास भी कोयला रखा हुआ है उसने पीछे कोयला देने के लिए, पर कोयले से तो फिर मुंह काला भी तो होगा, ये भी तो ध्यान में रखने वाली बात। जौहरी तो बहुत कुछ दे सकता है, उससे वह चीज क्यों नहीं मांगते। भक्तजनों एक ही साधन वहन में आता है, एक ही साधन जो परमानंद की प्राप्ति करवाने वाला है, जो अत्यंतिक सुख की प्राप्ति करवाने वाला है, जो अविनाशी सुख की प्राप्ति करवाने वाला है, वह है भगवान के श्री चरणों में प्रीति उसकी भक्ति। जानते हो जब आप लोग जप करते हो उस जाप का मापदंड क्या है, हमारा जाप ठीक चल रहा है, ठीक दिशा में चल रहा है या मात्र गिनती ही बढ़ रही है। बहुत लोगों ने नियम बना रखा हुआ है इतना जाप करना है, नियम तो निभ रहा है, नियम तो निभ रहा है, लेकिन प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। देवताओं एवं राक्षसों ने भगवान को प्रकट करने का साधन भगवान शिव से जब पूछा था, एक ही जवाब दिया, मेरे राम केवल प्रेम से प्रकट होते हैं, इन्हें प्रकट करने का और कोई साधन नहीं है। अरे प्रकट कहां से करना है, भीतर ही तो वह विराजमान है। विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन्हें याद तो करके देखिएगा। नियम तो हम निभा रहे हैं लेकिन उससे प्रेम नहीं उपज रहा, उससे प्रेम बढ़ ही नहीं रहा, प्रेम पैदा ही नहीं हो रहा, तो वह प्रकट कैसे होगा। जानते हो इतनी सी दूरी, आंखें यहां है, बुद्धि यहां है, वह यहां बैठा है। स्वामी महाराज कहते हैं बहुत पास ललाट में बैठा है, बहुत दूर नहीं बैठा है। इतनी दूरी भी हम तय नहीं कर पाते तो इस दूरी का कारण बताऊं आपकी सेवा में, वह ये हमें स्वामी महाराज की गुरुजनों की बात पर विश्वास नहीं है, हमें परमात्मा में विश्वास नहीं है। इससे हमारी दूरी तय नहीं हो रही बल्कि और बढ़ रही है। ना गुरु में विश्वास ना परमात्मा में विश्वास, ना मंत्र में विश्वास।
इसलिए ये थोड़ी सी दूरी ना तय होती है, ना कभी खत्म होती है, बल्कि यूं कहिएगा ये दूरी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है।
एक साधन भक्तजनों, इस दुर्बुद्धि व्यक्ति से याद रखिएगा, अनजान अबोध बालक की बात याद रखिएगा,
विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक परमेश्वर के श्री चरणों से प्रेम कर डालिएगा। मैं अपना मन तुम संग जोड़ा, तुम संग जोड़ सभी संग तोड़ा। जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। कैसे आए राम की शरण में, पत्थर तो उतर गए हमसे बेहतर हैं, इसलिए जड़ हैं हमारी, है तो बड़ी खुशकिस्मती की बात, लेकिन हम इसे दुर्व्याघ में परिवर्तित कर लेते हैं। परमेश्वर ने हमें बुद्धिजीवी तो बनाया है, लेकिन हम इस बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। इसी बुद्धि में है वह अहम बसा हुआ, जो परमेश्वर की शरण में नहीं जाने देता। पत्थर का अहम मर गया हुआ है, वह जड़ है, उसमें अहम नहीं है, इसलिए उसे तरने में कोई कठिनाई नहीं है। अहल्या तर गई क्योंकि उसने अपने आप को जड़ बना लिया था। हमें अपने आप को जड़ बनाना आता नहीं, इसलिए हम तरे तो तरें कैसे, शरण में जाएं तो जाएं कैसे। आइए इसी बात पर थोड़ी आज चर्चा कर लेते हैं। पिछले सप्ताह इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे ना, अविनाशी सत्य की प्राप्ति करनी है तो हमारी साधना के अनुसार एवं अन्य साधनाओं में भी भक्ति ही एकमात्र साधन कहा जाता है, जो हमें उस अविनाशी पद की प्राप्ति करा देती है, उस परमानंद की प्राप्ति करा देती है। अन्य साधन मोक्ष तो प्राप्त करवा देते हैं, लेकिन परमानंद की प्राप्ति जो है वह बिना भक्ति के नहीं होती। ये ज्ञानी भी स्वीकारता है, कर्मयोगी भी मानता है, भक्त भी मानता है एवं शरणागत तो मानता ही है। ये भक्ति कैसे प्राप्त, जब भक्ति ही एक मात्र साधन है उस परमानंद की प्राप्ति का, उस परम शांति की प्राप्ति का, तो इसे कैसे प्राप्त किया जाए। देवऋषि नारद जो भक्ति के आचार्य हैं, ब्रह्मा जी के बाद उनका दूसरा नंबर आता है भक्ति के आचार्यों में। नारद भक्ति सूत्र में वह वर्णन करते हैं कुछ एक साथ, सभी साधनों का उल्लेख आपकी सेवा में ना करके अंत में इस संदर्भ में वह अपना निष्कर्ष निकालते हैं। एक ही प्रमुख साधन है इस भगवत भक्ति की प्राप्ति का, मत सोचिएगा ये अल्पबुद्धि कुछ अपने मन से बोल रहा है, कुछ नहीं बोल सकता। नारद भक्ति सूत्र पढ़िएगा, सब चीज आपको वहां लिखी मिलेगी। क्या साधन है, आरंभ तो करते हैं भक्ति ही भक्ति का साधन है। एक चिंगारी लगी तो लगते उठने में कोई देरी नहीं लगती, चिंगारी की आवश्यकता है, भक्ति से भक्ति मिलती है। ये चिंगारी भी कैसे लगे विचार करें, चिंगारी लगाने के लिए या तो कोई दूसरी चिंगारी होनी चाहिए या अपने पास दिया सलाई होनी चाहिए तो ही तो लगेगी, कैसे लगे। इसलिए अन्य बातों को छोड़ के मेरी माताओं एवं सज्जनों, इस अल्प बुद्धि बालक की बात पर विश्वास करो। देवर्षि नारद की भाषा ये आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, शास्त्र की भाषा आपके सामने प्रस्तुत करी जा रही है। वह कहते हैं किसी सत्पुरुष का संग मिल जाए, किसी सत्पुरुष की कृपा हो जाए तो ही भक्ति मिला करती है, उसकी कृपा के बिना भक्ति नहीं मिला करती। प्रमाण के तौर पर श्रीमद् भागवत में जड़ भक्त का नाम आपने सुन रखा है। स्वामी जी महाराज ने जड़ भक्त पर कथा लिखी, पढ़ लीजिएगा। आप जानते ही हैं राजा रघुगुन पालकी लिए जा रहा है, उनको एक व्यक्ति उठाने वाला चाहिए। वह जड़ भर फटका करता है, मोटा ताजा है, उसको पकड़ के पालकी उठाने के लिए रख लेते। जड़ भर की साधना अद्वितीय, जड़ हो गया हुआ है वह, नाम देखिएगा, बात जब से चली जड़ हो गया हुआ है, इसलिए उसे करने में कोई कठिनाई नहीं। कठिनाई तो हमें जो अभी तक जड़ नहीं हुए। भक्त जड़ हो गया हुआ है, रघुगुण को उपदेश देता है, राजन पढ़िए श्रीमद् भागवत इस संदर्भ को। राजन भक्ति या ईश्वरीय प्रेम किसी तपस्या का फल नहीं है। जड़ भक्त के शब्द सुनिए माताओं, ये किसी तपस्या का फल नहीं है। भगवत प्रेम किसी यज्ञ द्वारा नहीं मिला करता, भगवत प्रेम घर एवं परिवार छोड़ने पर भी नहीं मिला करता। भगवत प्रेम सूर्य आदि देवताओं की उपासना से भी नहीं मिला करता। राजन किसी संत महात्मा की, किसी भक्त की चरण धूलि में लोटपोट हुए बिना ये भगवत प्रेम नहीं मिला करता। कोई संत महात्मा, कोई भक्त भगवान का जो अति प्रिय है उसकी चरण धूलि मिल जाए तो उसमें जो व्यक्ति लोटपोट हो जाए, मानो उसकी चरण शब्द जो ग्रहण कर लेता है, वह उसे स्वीकार कर लेता है, तो उसे वह निहाल होकर भक्ति दे देती है। इसके बिना भक्ति नहीं मिलती। इस मुख्य बात को याद रखिएगा। एक बात इसके साथ ही मिलती जुलती और ये तो बात स्पष्ट हुई। शास्त्र कहते हैं, भगवान अपने श्रीमुख से भी कहते हैं, मेरे से प्रेम क्या मांगते हो, मैं तो स्वयं प्रेम का भूखा हूं, मेरे पास प्रेम नहीं। उनके पास जाओ जो प्रेम के धनी हैं, मेरे प्रेमी हैं, मेरे भक्त हैं, जो संत महात्मा हैं, उनसे प्रेम जाके मांगो, उनसे जाके भक्ति मांगो, उनसे भक्ति मिलेगी, मेरे पास भक्ति नहीं है। मुझे लगता है भगवान थोड़ी संतों महात्माओं की अधिक बढ़ाई कर रहे हैं, ये उनका बड़ा पद है। संत महात्मा भी भक्ति कहां से देगा, संत महात्मा भी प्रेम कहां से देगा। एक ही तो स्रोत है ना भक्ति अथवा प्रेम का, और वो है भगवान स्वयं, उसी से लेके तो देगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच जाइएगा। अभी आपने सुना राम कृपा के बिना राम प्रभुताई जानी नहीं जाती, राम कृपा के बिना उसकी कृपा हमारे ऊपर हुआ नहीं करती। तो एक ही सोर्स, एक ही स्रोत याद रखिएगा भगवत भक्ति प्राप्ति का, प्रेम की प्राप्ति का, और वो है भगवान की कृपा। भगवत कृपा कैसे मिले? संत महात्मा गाते हैं भगवान कल्प करु, कल्प करु अर्थात कल्पना का वृक्ष,
से जो मांगो मिलता है। एक छोटी सी कहानी, एक व्यक्ति थका मांदा एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया है, नींद नहीं आ रही कि भूखा है। मन में आया इस वक्त भूखे को कहीं से कुछ खाने को मिल जाए क्या अच्छा। कल्प करूं था, कल्प करूं मानो हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला, इसलिए स्वादु भोजन बड़े सुंदर थाल में सजा हुआ उस व्यक्ति के सामने आ गया, खा लिया। पेट भरा, विश्राम करने को मन किया। मन में आया यदि इस वक्त विश्राम का भी कोई साधन बन जाए, चारपाई मिल जाए, अच्छा बिस्तर मिल जाए तो आराम कर लूं। चारपाई आ गई, बिस्तर लग गए। सोने लगा तो मन में विचार आया, निर्जन वन एकांत, यहां कोई नहीं, इसी वक्त कहीं कोई भूत आ गया और मुझे खा लिया तो भूत आ गया खा गया। यही हाल तो हमारा है। कल्प करूं परमेश्वर से, कल्प करूं संत महात्माओं से, हम इधर उधर की कामनाएं तो पूर्ण करते हैं, अंत क्या होता है? भूत आता है और खा जाता है। जन्म इसी प्रकार से बीते जा रहे हैं। अब तक वो नहीं मांगा जो मांगना चाहिए, इसलिए एक दृष्टांत के माध्यम से आपकी सेवा में, दृष्टांत तो दो हैं, एक रामायण जी में और दूसरा श्रीमद् भागवत में, क्या चाहिए परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए। काकविशुंडी जी का प्रसंग, काकविशुंडी जी महाराज बालराम से खेलने के लिए अयोध्या में जाते हैं, राजा दशरथ के आंगन में। ये उनका नित्य का काम है, हर युग में जाते हैं, हर युग में राम अवतरित होते हैं, हर युग में काकविशुंडी जी बालराम से खेलते हैं। आज मां कौशल्या ने मालपुआ खाने को दिया है भगवान राम को, रोज दिया करते कुछ ना कुछ अपनी जूठन काकविशुंडी जी को खाने के लिए, आज जूठन नहीं दे रहे। कतराते परमात्मा नित्य हमारी कामना को पूरी करता है। सोच विचार के देखना भक्तजनों, उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है। कभी किसी रूप में आके करता है, कभी किसी रूप में आके करता है, पति के रूप में, बाप के रूप में, पुत्र के रूप में, आचार्य के रूप में, अनेक रूपों में आके वह हमारी कामनाओं को पूर्ण करता है। आज काकविशुंडी जी की कामना पूर्ण नहीं हो रही, इसलिए राम के प्रति संदेह मन में आ गया, कैसा है ये? कहते हैं भगवान उदार है, लेकिन कितना कंजूस है ये, आज अपने मुख से झूठा मालपुआ मुझे नहीं दे रहा, ये राम है भी कि नहीं है? ना हमारे से मिलती जुलती बात, नित्य कामनाएं पूरी होती है तो भगवान, आज किसी कामना पूर्ति में भगवान ने थोड़ी सी देरी कर दी तो संदेह मन में उठता है ये राम है भी कि ऐसे ही है। अविश्वास, अविश्वास परमात्मा से जीव को दूर ले जाती है, इसलिए काकविशुंडी जी महाराज बालराम से दूर जा रहे हैं। बीच की बात छोड़िएगा, इतनी बात, आगे आगे काकविशुंडी, पीछे पीछे राम की बह, जैसे हमारे पीछे हमेशा बह उनकी रहती है। देखो तो पीछे मुड़ के तो देखो, आपका स्वभाव ही नहीं है, आपका स्वभाव आगे 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 बढ़ने का स्वभाव है। आगे क्या है? आगे देखिएगा क्या है, अभी भविष्य के प्रसंग में पता लगेगा आगे क्या है। गरुड़ जी महाराज को काकविशुंडी कथा सुना रहे हैं, मैं आगे आगे कोई ऐसा स्थान नहीं जो मैंने छोड़ा हो, जहां देखूं भगवान की भुजा मेरे पीछे। गरुड़ जी ने कहा, फिर तो आपको पकड़ लिया होगा। काकविशुंडी कहते हैं ना, पकड़ा नहीं, मात्र दो उंगल का अंतर रह गया, कर रहा, ये दो उंगल का अंतर क्या है? आज भगवान भक्त को पकड़ने जा रहे हैं तो भी दो उंगल का अंतर। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीला में भक्त भगवान को पकड़ते हैं, मां यशोदा बाल भगवान को ओखल के साथ बांधना चाहती है, लंबी से लंबी रस्सी लाती है, तो भी दो उंगल का अंतर भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। यहां भी दो उंगल का अंतर, भगवान कृष्ण के संदर्भ में, भगवान राम के संदर्भ में भी दो उंगल का अंतर, तो ये दो उंगल का अंतर है क्या? संत महात्मा कहते हैं एक परमेश्वर की अंगुली और एक जीव की अंगुली। उसकी कृपा के बिना संभव नहीं, लेकिन उसकी कृपा भी तब संभव है जब जीव भी अपनी एक उंगल बताता है। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी, कल्पतरु होते हुए भी, करुणानिधान होते हुए भी, वह कृपा जो वह बरसाना चाहता है वह कर नहीं सकता। क्यों? आपके अंदर जो इच्छा वाली, जो पुकार वाली उंगली है, जो प्रार्थना वाली उंगली है, वह आपने अभी तक बढ़ाई ही नहीं है। छोटी मोटी इच्छा होती है तो वह बूंदाबांदी करके चला जाता है, लेकिन मूसलाधार वर्षा तभी होती है जब वह इच्छा जो है वह परमेश्वर के प्रति पुकार बन के जाती है हृदय से। इतने वानर गए हुए हैं, ये कोई बात अटपटी नहीं करी जा रही। भगवान चाहते हैं हर साधक साधना करे, जानते हैं रावण कहां है, वानर सेना को कह रहे हैं पूर्व में जाओ, पश्चिम में जाओ, दक्षिण में जाओ, उत्तर में जाओ, किधर जाओ उधर जाओ। क्यों? जानते हुए भी कि रावण का निवास तो दक्षिण में है, कह रहे हैं ना सब दिशाओं में जाओ, किसी को नहीं मिले। एक हनुमान जी महाराज को शांति की प्राप्ति हुई, शांति की खोज, भक्ति की खोज एक ही भक्त कर सका, और वह हैं हनुमान जी महाराज। अवश्य कोई गुण है ना, क्यों? प्रभु की कृपा उनके ऊपर बहुत है, इसलिए उन्हें प्रभु को पुकारना आता है। वह प्रभु के हृदय को द्रवित करना जानते हैं, वह ऐसी तकलीफ जानते हैं जिससे प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज विभीषण भी आ गया है, कब? कौन है विभीषण? हमारी तरह जीव। क्षमा करना, एक दो मिनट ऊपर हो जाएंगे, आज इस संदर्भ को समाप्त विश्राम ही देने की इजाजत चाहूंगा आपसे। भविष्य कौन है? जी, रावण, उसका बड़ा भाई मोह। ध्यान देना, प्रतीक आत्मक शब्द है ये, पर बड़े मार्मिक। आज मोह ने क्या किया? आज मोह ने छाती में टांग मारी है। हमारे साथ नित्य होता है, जिसके प्रति मोह, पुत्र के प्रति मोह, बड़ा खतरनाक मोह। पत्नी के प्रति मोह, पति के प्रति मोह, इत्यादि इत्यादि। जिसके प्रति भी मोह होगा भक्तजनों, वह आपको टांग मारे बिना रह ही नहीं सकता। ये मोह का स्वभाव है। भगवान तोड़ाते हैं, हम जोड़ते हैं। वह टांगे मरवाते हैं, धक्के मरवाते हैं। ध्यान देना, जिनके प्रति आप मोहग्रस्त हो, सोच विचार के देखो, क्या उनसे नित अपमानित नहीं होते हो आप? इसी को तो कहेंगे टांग मरवाना।
लेकिन हम भी बाज नहीं आते, हम भी छोड़ेंगे नहीं।
मुंह से मार खाके भविष्य जीव समझदार है, सीधा प्रभु राम की चरण शरण में आ गया।
शरणागति, भगवान के पास भक्तजनों ये शब्द याद रखना,
शरणम।
इस स्थान का नाम स्वामी जी महाराज ने शरणम रखा है, शरण में आने के लिए। जानते हो क्या महानता है शरण में जाने की? एक उज्ज्वल उदाहरण जो आपकी सेवा में अभी रखी है वह उदाहरण है भविष्य की। भगवान के पास ज्ञानी जाता है तो उसकी परीक्षा लेते हैं, भगवान के पास कर्मयोगी जाता है तो उसकी भी परीक्षा लेते हैं, भगवान के पास भक्त जाता है तो उसकी भी परीक्षा लेते हैं। लेकिन भगवान के पास जब शरणागत जाता है तो वह कहता है, हे प्रभु, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मैं ध्यानी हूं, ना मैं कर्मयोगी हूं और ना ही मैं भक्त हूं, मैं तो शरणागत हूं, मैं परीक्षा देने के लिए नहीं आया, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया हूं। क्यों? आपके हनुमान जैसे, तुलसीदास जैसे संत महात्मा ढंडोरा पीटते हैं आपके लिए, जो कोई आपकी शरण में आ जाता है आप उसे कभी ठुकराते नहीं, मैं तो ये पकने के लिए आपके पास आया। एक उंगल परमेश्वर की कृपा की और एक उंगल जीव के पुकार की, अंतःकरण से भीतर से जब पुकार निकले, दोनों मिल जाए तो सब कुछ